रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास में सर्वप्रथम हम सभी उपस्थित अनुपस्थित वैष्णवों को धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। इस वर्ष की जो जन्माष्टमी हमने मनाई, ये 3 दिन का महोत्सव, ये हर वर्ष दिन प्रतिदिन इसमें वृद्धि होती जा रही है। मुझे बताया गया कि ये पूरे 3 दिन मिलाकर कुल मिलाकर 20,000 से 25,000 भक्त आए दर्शनार्थी, जिन्होंने श्री राधा मदन गोपाल जी और श्रील प्रभुपाद की कृपा ग्रहण की। तो सारे भक्तों का ये योगदान, और आइए हम सभी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इस वर्ष की जन्माष्टमी महोत्सव में योगदान दिए, उनको 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो भगवान गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु गोवर्धन धारण किए, और हम इस विषय पर हैं कि भगवान के नजरों में पूजनीय कौन है। गोवर्धन कोऑपरेट्स विद द प्लान ऑफ कृष्णा, गोवर्धन लिव्स टू सेल्फलेसली सर्व अदर्स। तो पिछले रविवार हमने रामायण से भरत चरितामृत प्रारंभ किया, लव वर्सेस ड्यूटी। भरत इनका चरित्र रामायण में, जो रामायण के मुख्य पात्र हैं, उन्होंने भरत के चरित्र का गुणगान किया है। प्रभु श्री राम साक्षात 14 वर्ष वनवास में जो थे, कौशल्या को भी उन्होंने मिस नहीं किया जितना कि उन्होंने भरत को मिस किया। वशिष्ठ मुनि जो भरत के गुरु, उन्होंने भरत के विषय में कहा, जो भी कुछ भरत के मुख से शब्द निकलेंगे वो धर्म कहलाए जाएंगे। ये सर्टिफिकेशन साक्षात उनके गुरु ने दिया। और हमने ये भी समझा पिछली दफा, वाली को जब भगवान ने छिप कर मारा तो वाली वो शिकायत करता है कि भरत के भाई होते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हो, भरत जैसे धर्मात्मा के भाई होते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो एक रिकैप हम लेंगे, पिछले रविवार को क्या क्या लेसन्स हमने प्रारंभ किए थे। रियल ग्लोरिफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू हु इज ग्लोरिफाइंग हुम। साइन ऑफ समवन बीइंग ट्रूली ग्लोरियस इज व्हेन पीपल अडोर हिम बिहाइंड हिज बैक। प्रिंसिपल टीचिंग ऑफ रामायण, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर राइट्स, अधिकार और हक। अक्सर ये शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल होता है कलयुग में, मेरा अधिकार मेरा हक चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो। रामायण हमें क्या सिखाता है कि अधिकार और हक से पहले हमारी जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है। और एक इंटरेस्टिंग हमने कॉन्सेप्ट लिया, रिस्पॉन्सिबल डिटैचमेंट। व्हेन वी गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी द फ्लिप साइड इज वी बिकम अटैच्ड, देन वी ट्राई टू बी डिटैच्ड, एंड द फ्लिप साइड ऑफ डिटैचमेंट वी बिकम इररिस्पॉन्सिबल। सो देयरफॉर द परफेक्ट कॉम्बिनेशन रामायण टीचेस, रिस्पॉन्सिबल डिटैचमेंट। We have to be detached, but responsible. अब ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा हमने पिछली दफा लिया, being correct, being right, बहुत थिन लाइन है बींग करेक्ट एंड बींग राइट. और अक्सर हम जो हमारी स्थिति है उसे किसी ना किसी प्रकार से जस्टिफाई कर देते हैं. इवन दो कलयुग का तो ये हाल है, इवन दो आई एम रॉन्ग आई विल प्रूव हाउ इन दिस सिचुएशन आई एम राइट. तो आपको याद होगा कुछ हमने फनी क्वेश्चंस लिए थे, नहीं क्वेश्चंस फनी नहीं थे, आंसर्स फनी थे उसके. वेयर वॉज द पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया साइंड एट द बॉटम ऑफ द पेज. तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैथमेटिक्स टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा. यू हैव 6 मैंगोज, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट 6 मैंगोज अमंगस्ट 15 पीपल. मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम. यू हैव 6 मैंगोज, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट 6 मैंगोज अमंगस्ट 15 पीपल. बच्चे ने आंसर क्या दिया? आई विल मेक मैंगो मिल्कशेक. I'll use the 6 mangoes, make mango milkshake and feed it to 15. Was he wrong or was he right? Answer sahi hai ya galat hai? Aap examiner ho, invigilator ho, kitne marks doge aap is answer ko? Mathematically wrong. Realistically, right. Therefore, never see your life and anyone's life in just square boxes, in just some mathematical calculations. Life is beyond square boxes. Life is beyond just मैथमेटिकल calculations. कई होते हैं ना कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं हमारे जीवन में कि वो सोशली करेक्ट होंगे, हर दृष्टिकोण से सोशली करेक्ट होंगे, पर कुछ तो होगा जिसके वजह से हम उनको पसंद नहीं करते. हम भी पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि क्या है. यू माइट बी परफेक्ट बट आई डोंट लाइक यू. और दूसरे दृष्टिकोण में कोई है जिसके अंदर बहुत खामियां हैं फिर भी हमें बहुत पसंद आते हैं. इंग्लिश में एक सेइंग है, ओ इंग्लैंड विथ ऑल दाई फॉल्ट्स आई स्टिल लव यू. कोई बात नहीं, कल समझ लेना. जैसे मैंने देखा है लोग ये चाट जब खाते हैं, पानी पूरी भेल पूरी, अभी आपने देखा होगा कि होटल में, बड़े बड़े होटल में वो जो उनके आलीशान डाइनिंग हॉल्स होते हैं उसके अंदर बैठ के चाट नहीं खाते. वो चाट खानी है तो किसी गंदे से रोड साइड ऐसे चाट वाले के पास खड़े होके खाएंगे, है ना. सारी उंगलियां डाल डाल के खिला रहा हो, सब पता नहीं उसने उंगलियां धोई कि नहीं धोई, लेकिन लोगों को उसमें मजा आता है. कभी आपने देखा नहीं होगा पानी पूरी बैठ के कोई खा रहा है खड़े होके उसको. So yes, externally nothing is hygienic, nothing appears to be correct, but people, they love it. So this is going beyond certain human calculations. तो हमने इंटरेस्टिंग पिक्चर आप लोगों को दिखाया था, जस्ट बिकॉज यू आर राइट डजंट मीन आई एम रॉन्ग, यू जस्ट हैवंट सीन लाइफ फ्रॉम माय पोजीशन. पेन रिलीविंग लाई इज बेटर देन पेन इंक्रीजिंग ट्रुथ. तो यहां से हमने रामायण का प्रसंग प्रारंभ किया था, वनवास की शुरुआत हुई है, सीताराम लक्ष्मण सुमंथरा उनको रथ पर ले जा रहे हैं अयोध्या के बाहर, और पूरी अयोध्या नगरी अब तक इस सदमे को समझ नहीं पाई है. कौन से सदमे को, कि ये यकायक अचानक हुआ क्या, रातों रात ये हुआ क्या, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है. तो पूरी अयोध्या नगरी बिना सोचे समझे निकल पड़ी है इन तीनों के पीछे, रथ के पीछे, और सबसे आगे हैं महाराज दशरथ, जो जानते हैं कि क्या हुआ है. एक दृष्टिकोण से उन्हीं के वजह से हुआ है, परंतु वो भी जा रहे हैं और सुमंथरा से बोल रहे हैं, जो सारथी सुमंथरा उनसे बोल रहे हैं कि ये रथ को इतना तेज मत दौड़ाओ. रामचंद्र जी कहते हैं जितना तेज हो सकता है उतना दौड़ाओ. और पूरे रामायण में केवल यही जो प्रसंग है जिसमें रामचंद्र जी सुमंथरा से कहते हैं झूठ बोलने के लिए. मर्यादा पुरुषोत्तम परम सत्य सुमंथरा से झूठ बोलने के लिए कहते हैं कि यदि दशरथ महाराज पूछे कि मैंने तुमको कहा था फिर भी तुम तेज क्यों दौड़ाए, तो बोल देना सुना ही नहीं दिया. तो ये पहला लेसन, पेन रिलीविंग लाइ इज बेटर देन पेन इंक्रीजिंग ट्रुथ. रियल लव इज टेस्टेड व्हेन देयर इज सेपरेशन फ्रॉम द बिलवड. इस जन्माष्टमी मैं श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहा था, और दशम स्कंद में मैंने देखा, हम सब भी जानते हैं कि भगवान वृंदावन में अवतरित हुए और भगवान ने अपनी ब्रजलीला कितने वर्ष करी, 11 साल. केवल 11 साल भगवान वृंदावन में रहे, टोटल 125 साल भगवान रहे इस धराधाम पर. उन 125 सालों में वृंदावन में केवल 11 साल रहे भगवान. प्रोपोर्शन आप देखिए. अब हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान जब अवतरित होते हैं तो एक प्राइमरी रीजन होता है भगवान का अवतरण का, और एक सेकेंडरी रीजन होता है मुख्य और गौण. तो भगवान का प्राइमरी रीजन क्या था, ब्रजवासियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उन मधुर लीलाओं का आदान प्रदान करना, यह उनका प्राइमरी रीजन था जिसके लिए वो अवतरित हुए थे. धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश, ये सब सेकेंडरी रीजन है. तो मैं इसके विषय में सोच रहा था कि प्राइमरी रीजन, अब किसी व्यक्ति के जीवन का कोई प्राइमरी कार्य होगा उसके ऊपर वो सबसे ज्यादा समय बिताएगा ना. कैलकुलेशन आप देखिए, प्राइमरी कॉज के लिए भगवान ने 11 साल बिताए, सेकेंडरी के लिए 120, उससे भी ज्यादा. क्यों, क्या लॉजिक है, हु इज करेक्ट, हु इज राइट, हु इज रॉन्ग. तो ये जो कारण है कि अयोध्या वासियों का जो एक्चुअल प्रेम भगवान कृष्ण के भी लीला में हम ये देखते हैं कि भगवान वृंदावन से बाहर गए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वृंदावन से बाहर भगवान गए तो ब्रजवासियों को भूल गए या ब्रजवासियों के साथ उनकी लीला समाप्त हो गई। नहीं, अब उसी मुख्य कारण को और मुख्य बनाया भगवान ने वृंदावन के बाहर जाकर। सो इन वन सेंस कृष्णा आउटसाइड ऑफ वृंदावन वॉज ऑल्सो फॉलोइंग द प्राइमरी रीजन ऑफ हिज इनकार्नेशन। ही इंक्रीज द लव ऑफ ब्रजवासीज थ्रू सेपरेशन। अब आदान प्रदान ब्रजवासियों के साथ कैसा था? वियोग के साथ। तो जो भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं उसमें एक अंग्रेजी का शब्द है फिनेस। ही डज इट विथ फिनेस, अदा। उनकी एक अदा होती है, अनोखी अदा होती है। तो 11 साल के बाद बाहर जाने में भी भगवान की अदा है, उसमें भी उनका प्राइमरी रीजन उन्होंने प्राइमरी बनाकर रखा, ब्रजवासियों को और इंटेंस प्रेम में, और इंटेंस प्रेम के सागर में डुबोया। हम इस मुद्दे तक पहुंचे थे कि अब अयोध्या वासियों को प्रभु श्री राम सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि अब वो स्थिति आ गई थी जब भगवान को केवल सीता और लक्ष्मण के साथ अकेले हो जाना है, अयोध्या वासियों को छोड़कर अकेले हो जाना है, या अयोध्या की सीमाओं तक पहुंच चुके हैं, अब इससे आगे अयोध्या वासियों का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो प्रभु श्री राम सांत्वना दे रहे हैं रथ पर खड़े, क्योंकि पूरी अयोध्या नगरी वहां पर मौजूद है। तो सबको भगवान देख सकें और सब भगवान को देख सकें, क्योंकि अब 14 वर्ष दर्शन नहीं होने वाला प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे का। इसलिए भगवान रथ पर चढ़े और रथ पर चढ़े हुए भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को सांत्वना दे रहे हैं। तो ये लेसन है यहां पर, लॉर्ड श्री राम वॉज हैंडलिंग द सिचुएशन एज अ परफेक्ट लीडर। तो इसको कहेंगे सिचुएशनल लीडरशिप। एक होता है जब एक लीडर जो एक नॉर्मल सिचुएशन होती है उसमें लीडर जो है वो लीडरशिप की भूमिका निभाता है, और दूसरी उसकी भूमिका होती है जब सिचुएशंस अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो उस समय हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं वो लीडर फॉलो ना करे। जैसे कि सुमंथरा को झूठ बोलने के लिए कहा, डेफिनेटली भगवान कृष्ण होते तो फिर भी हम समझ जाते, परंतु प्रभु श्री राम झूठ बुलवा रहे हैं, इसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। तो हम ये सिचुएशनल लीडरशिप के ऊपर गौर करेंगे कि दोनों राम और कृष्ण इन दोनों ने सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया। तो रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों रथ पर खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ पर खड़े अर्जुन को पैसिफाई कर रहे हैं, अर्जुन को सांत्वना दे रहे हैं। अचानक सिचुएशन क्या हुई? भगवान तो अब इस आशा में थे कि ये युद्ध प्रारंभ होने वाला है, अचानक अर्जुन वो कहते हैं कि मुझसे गांडीव नहीं उठाया जाएगा, मैं नहीं करूंगा युद्ध। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया भगवान श्री कृष्ण ने, भगवद गीता ये उसका ज्वलंत उदाहरण है। और यहां पर भी भगवान श्री राम रथ पर खड़े अयोध्या वासियों को सांत्वना दे रहे हैं। तो ये दोनों रथ पर खड़े सिचुएशनल लीडर की भूमिका निभा रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत से एक प्रसंग लेंगे जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने वही अर्जुन जिनको भगवद गीता सुनाई, ये कह सकते हैं कि स्पून फीडिंग किया, सब प्रकार के योग बताए और स्वयं के विषय में बताया, इस दुनिया की असलियत बता दी, देहात्म बुद्धि क्या है सब कुछ, सांख्य योग सब कुछ बताया, स्पून फीडिंग जिसको कहेंगे। वही भगवान अर्जुन के साथ युद्ध के पश्चात कैसे डील करते हैं, तो ये दोनों का कंपैरिजन जानने योग्य है। युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और युद्ध के पश्चात अर्जुन की सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, दोनों में अंतर क्या है। अर्जुन इज नाउ सपोज टू बी मोर मैच्योर्ड आफ्टर द वॉर एंड डेफिनेटली आफ्टर हियरिंग दी भगवद गीता। तो ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में है, अश्वत्थामा, मेरे ख्याल से 7th चैप्टर है, द सन ऑफ द्रोणा पनिष्ट, ये उस चैप्टर का टाइटल है। अब देखो श्रीमद् भागवत को चैतन्य महाप्रभु ने कहा है प्रेममय ग्रंथ। चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् भागवत के विषय में कहा गया है प्रेममय ग्रंथ, और प्रेममय ग्रंथ की शुरुआत कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से हो रही है, और कॉन्फ्लिक्ट किस में है, पांडव और कौरवों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं, पांडवों में कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन भीम अर्जुन द्रौपदी और कृष्ण भी वहां पर मौजूद होते हैं। और ये 7th चैप्टर जहां पर, और ये फर्स्ट पास टाइम सुनाया जा रहा है, सुत गोस्वामी फर्स्ट पास टाइम ऑफ श्रीमद् भागवतम कौन सा है, अश्वत्थामा को कैसे दंडित किया गया, यह है प्रेममय भागवत। तो इसे क्या समझ में आ रहा है कि भागवत हमें यह सिखा रहा है कि जब हम, यदि पांडव एक साथ आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, और पांडव जो इतने मैच्योर डिवोटीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो प्रसंग ये है कि युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा जो जीवित था, द्रोणाचार्य का पुत्र, मध्य रात्रि में सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को नृशंस तरीके से अश्वत्थामा मार डालता है, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। द्रौपदी के 5 पुत्रों का उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। अश्वत्थामा क्रोध और ईर्ष्या के वशीभूत होकर द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर देता है। कल्पना कीजिए यह स्थिति कि किसी के युवा अवस्था में किसी के पुत्र के सर को धड़ से अलग कर दिया है, क्या बीत रही होगी ऐसे माता पिता के ऊपर। तो अर्जुन बंदी बनाकर लाता है अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने। तो सीन क्या है, वहां पर सारे पांडव मौजूद हैं, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण, और बंदी बनाकर किसको खड़ा रखा है, अश्वत्थामा को। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ये सिचुएशन, अब इस सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सिचुएशनल लीडरशिप की क्वालिटीज टेस्ट करते हैं। भगवान ने युद्ध से पहले लीडर बनकर सिचुएशन को संभाला, अब वो अपेक्षा रख रहे हैं कि जिसको मैंने ट्रेनिंग दी, जिसको मैंने भक्ति शास्त्री बनाया, ये अर्जुन, ये अर्जुन के अंदर अब गुण है कि नहीं लीडर बनने के। तो ये सिचुएशनल लीडरशिप भागवत के शुरुआत में अर्जुन के सामने अब एक तरफ है द्रौपदी, दूसरी तरफ है भीम, कृष्ण और स्वयं अर्जुन भी। और दो प्रश्न क्या है, अश्वत्थामा को जान से मार डालना चाहिए या नहीं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक तरफ है न्याय, एक तरफ है कृपा, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विजन ऑफ कंपैशन एंड द विजन ऑफ जस्टिस। तो यहां पर क्या है, विजन ऑफ कंपैशन, विजन ऑफ जस्टिस। तो मैंने इस प्रसंग के तीन श्लोक लिए हैं। तो पहले दो श्लोकों में भगवान डायरेक्टली अर्जुन को बोल रहे हैं, और भगवान इन दो श्लोकों में जो बोलते हैं अर्जुन को और कंफ्यूज करते हैं, भगवान और ज्यादा कंफ्यूजिंग अर्जुन को बना रहे हैं, क्योंकि इन दो श्लोकों में भगवान अर्जुन के सामने दोनों मुद्दे रख रहे हैं कि क्यों अर्जुन को छोड़ देना चाहिए अश्वत्थामा को, और क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। और ये दोनों मुद्दों को रखने के पश्चात भगवान अब अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। नाउ यू डिसाइड। तो सबसे पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतता ही वदारहणा। सबसे पहले वो कहते हैं क्यों अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ये एक ब्राह्मण का पुत्र है, तो ब्राह्मण के पुत्र की हत्या ब्रह्म हत्या हुई, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। तो अर्जुन ने जब डायरेक्टली भगवान के मुख से ये लाइन सुनी तो अर्जुन को लगा, या किसी को भी लगेगा ना, कि हां भाई जब भगवान बोल रहे हैं शुद्ध संस्कृत में कि ब्राह्मण के पुत्र को मारना ब्रह्म हत्या के पाप के समान है, या ब्रह्म हत्या है, उसके समान नहीं, ब्रह्म हत्या है, तो नहीं मारना चाहिए। सेकेंड लाइन में भगवान कहते हैं, परंतु आतताई वदारहण, ये आतताई है, ये ब्राह्मण का पुत्र होगा जरूर, परंतु ये आतताई है, एग्रेसर। आतताई का अर्थ है कि इसने निष्पाप तुम्हारे पुत्रों की हत्या करी है। तो शास्त्र के अनुसार जब कोई आतताई आता है तुम्हारे सामने तो आतताई का वध तुरंत कर देना चाहिए। इसलिए भगवान ने सेकंड लाइन में क्या कहा, आतताई वदारहण। फिर भगवान आगे कहते हैं, मयैव वो भयम् आमनातम परिपाही अनुशासनम। फिर भगवान कहते हैं कि एक और बात जानने योग्य है कि न केवल अश्वत्थामा एक ब्राह्मण का पुत्र है, परंतु वो ब्राह्मण कौन थे, वो तुम लोगों के गुरु थे। ऐसे ही कोई पंडित पुरोहित नहीं थे पूजा करने वाले, डायरेक्टली तुम्हारे गुरु का ये पुत्र है, तो गुरु पुत्र की हत्या कैसे तुम कर सकोगे। परंतु फिर भगवान कहते हैं कि भीम चाहते हैं, जो कि तुम्हारे बड़े भाई हैं, भीम की ओर भगवान देख रहे हैं और भीम को पूछते हैं, क्यों भाई भीम तुम्हारी क्या इच्छा है। तो भगवान कहते हैं प्रियम च भीमसेनस्य, कि भीम जो तुम्हारे प्रिय हैं और तुम्हारे बड़े भाई हैं, ये भीम से पूछो ये क्या चाहते हैं। तो भीम तो अर्जुन की ओर देखकर बोल रहे हैं तो करता है कि मैं करूं। तो एक तरफ गुरु, दूसरी तरफ बड़ा भाई, दोनों गुरु के पद के होते हैं, बड़ा भाई और गुरु, दोनों को गुरु का पद दिया गया है। देखो भगवान कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं अर्जुन को। तो एक तरफ अर्जुन ये सुन रहे हैं, दूसरी तरफ ये सुन रहे हैं, दोनों का पलड़ा इक्वली भारी है। फिर भगवान द्रौपदी की ओर देखकर कहते हैं कि ये जो द्रौपदी है, पांचाल्य महियम एवच, पांचाली ये द्रौपदी, ये नहीं चाहती है कि अश्वत्थामा को तुम खत्म करो। तो हम जानते हैं द्रौपदी ने फर्गिव कर दिया था कि भाई मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ अब बीत रही है वो द्रोणाचार्य की जो पत्नी है उनके साथ बीते, जो उनके तो पति भी मर गए हैं और अगर एक बेटे को भी मार डालोगे तो न तो पति न बेटा, कोई सहारा नहीं रहेगा। तो भगवान बोल रहे हैं द्रौपदी की जो इच्छा है उसे भी तुम्हें इंपॉर्टेंस देना है, द्रौपदी की इच्छा है फॉरगिव करो। और भगवान कहते हैं कि जब तुमने द्रौपदी से विवाह किया था तो तुमने द्रौपदी को ये आश्वासन दिया था, क्या आश्वासन दिया था द्रौपदी को, कि द्रौपदी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ऊपर यदि किसी ने कोई आलोचना की तो मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए उसकी जान ले लूंगा। तो भगवान मैरिज वाउज याद दिला रहे, तो तुमने वो आश्वासन द्रौपदी को दिया था तो वो भी तुमको पालन करना है। और फिर सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र भगवान छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं आमनाय, कि तुम्हें आमनाय का अर्थ है शास्त्रों, तुम्हें शास्त्रों का पालन करना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार ये सारे जो एक ब्राह्मण का पुत्र और गुरु ये सब को फॉरगिव करना शास्त्र बताता है। परंतु ये शास्त्र बताए किसने हैं, मैंने, भगवान बोल रहे हैं ये शास्त्र बताए किसने हैं, मयैव वो हम आमनाय, मैंने ये शास्त्र बताए हैं और मैं चाहता हूं कि तुम इसको खत्म करो। सो फाइनली भगवान बोलते हैं कि मैंने जो शास्त्र तुम्हें बताया या तुमने जो मेरे दिए हुए शास्त्र पढ़े हैं, अब मैं उसके विरुद्ध बोल रहा हूं। नाउ अर्जुन परिपाही अनुशासनम, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अब इस वक्त क्या करना चाहिए। अब ये नहीं कि भगवान ने अर्जुन को एक हफ्ते का टाइम दिया, चलो अगले संडे मिलते हैं, तुम सोच के आना क्या करना है। उधर ही देन एंड देयर अर्जुन हैज टू प्ले द रोल ऑफ सिचुएशनल लीडर। और सभी अर्जुन की ओर देख रहे हैं, भीम, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भगवान स्वयं, सब अर्जुन की ओर देख रहे हैं कि अब अर्जुन क्या करेंगे। आप लोग जानना चाहेंगे तो बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें अर्जुन कहते हैं या अर्जुन के विषय में बताया गया है, अर्जुन सह सहसा ज्ञाय हरेर हार्दम अथास्य मानम जहार मूर्धन्यम द्विजस्व सह मूर्धजम। इस सुंदर श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन ने उस समय हरेर हार्दम अथासीन, भगवान श्री हरि के हृदय को पहचाना। ही वेंट बियॉन्ड ऑल आर्ग्यूमेंट्स, ये सारे जो दिए, और हरि हार्दम अथासीन, तो भगवान के हृदय को पहचानते हुए अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने तलवार निकाली और अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि था वो मणि अश्वत्थामा का गर्व था या अश्वत्थामा की पहचान थी, वो मणि अश्वत्थामा के माथे पर, तो अश्वत्थामा के केश और उस मणि को तलवार से काट के निकाल दिया। अर्थात जिंदगी भर अब अश्वत्थामा इस अपमानित अपने माथे को लेकर घूमता रहेगा, जो कि मृत्यु से भी बड़ा दंड अश्वत्थामा को दिया। तो जिंदा छोड़कर मार डाला अर्जुन ने, क्या किया, जिंदा छोड़कर मार डाला। इसको कहते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। और ये अर्जुन ने जो भगवद गीता सुनी थी, जो भगवान श्री कृष्ण से प्रैक्टिकल थियोरेटिकल दोनों पूरे महाभारत के युद्ध के पश्चात ये घटना हुई है, तो ये सारा जो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल ज्ञान जो है उसका समन्वय ये सिचुएशनल लीडरशिप में अर्जुन ने दिखाया है इस प्रसंग में। देन एंड देयर अर्जुन हरेर हार्दम अथासीन। तो इसलिए जब हम श्रीमद् भागवत या ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो जैसे अर्जुन ने श्रवण किया, उसके पश्चात अर्जुन ने जब समय आया तो इन ग्रंथों को रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड विजडम। विजडम इज बियॉन्ड नॉलेज। तो हम एक और उदाहरण लेंगे श्रीमद् भागवत से सिचुएशनल लीडरशिप का। ये एक और इंटरेस्टिंग उदाहरण है श्रीमद् भागवत में, पृथु महाराज और इंद्र का। तो पृथु महाराज वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए और अब आखिरी अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं कि वो रिकॉर्ड अब तक 100 अश्वमेध यज्ञ केवल देवराज इंद्र के पास था उनके खाते में, तो उनका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं था, देवराज इंद्र का रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा था 100 अश्वमेध यज्ञ का, उस सेंचुरी मारी थी। तो इंद्र ने जब देखा कि ये पृथु महाराज ये 100 अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, तो इंद्र क्या करते हैं, उनको इनसिक्योरिटी होती है, अलग अलग प्रकार की इनसिक्योरिटी इंद्र को होती रहती है। कोई उनका पद ले लेगा, ये भी एक पद है उनका जो उनको ख्याति प्राप्त हुई थी, द ओनली वन हु हैज परफॉर्म्ड 100 अश्वमेध यज्ञ, तो ये ख्याति कोई और न ले ले, तो इंद्र वो भेष बदल कर आते हैं सन्यासी का और घोड़ा चुरा कर ले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अश्वमेध यज्ञ में अश्व है, वो घोड़ा है, घोड़ा ही गायब। और पृथु महाराज, और एक दफा नहीं बहुत दफा, तो पृथु महाराज समझ जाते हैं कि ये इंद्र की करनी है। तो पृथु महाराज अब इंद्र को दंडित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब ब्रह्मा जी मौजूद प्रकट होते हैं वहां पर, और ब्रह्मा जी इंद्र को रोकते हैं। न केवल ब्रह्मा जी बल्कि भगवान विष्णु स्वयं इंद्र को लेकर आते हैं। अब देखिए यहां पर सिचुएशन क्या है, गलती किसने की है, गलती किसकी है, इंद्र की, कि धोखाधड़ी से अश्व को चुरा लिया। क्यों? ताकि ये यज्ञ ना कर सके, ताकि इनको ये ख्याति प्राप्त ना हो। प्रूवन, सबके सामने एक्सपोज हो गए इंद्र, परंतु भगवान विष्णु ने पृथु महाराज को कहा कि आप मत करो ये 100th यज्ञ। पृथु महाराज कह रहे हैं भाई करेक्ट किसको करना चाहिए, गलती किसने करी है। तो बहुत सुंदर भगवान विष्णु वाक्य कहते हैं पृथु महाराज से। भगवान कहते हैं पृथु, यू विल बिकम मोर फेमस बाय सैक्रिफाइसिंग द अश्वमेध सैक्रिफाइस। यू विल बिकम मोर फेमस, और इंद्र के सामने बोल रहे हैं। तो भगवान एक दृष्टिकोण से पृथु महाराज को कह रहे हैं और इंद्र को भी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई इंद्र जैसे जो होते हैं जिनको केवल झूठी शान पड़ी होती है, तो दे दे इसको, इसको झूठी शान चाहिए, इसको झूठी शान दे दे, क्योंकि ये इसमें ही खुश रहता है। परंतु ये 99 अश्वमेध यज्ञ के पश्चात तुम्हारे पास पूरी क्षमता है, वो क्षमता के इस्तेमाल नहीं कर व्हेन यू विल रिनाउंस इट, तुम्हें क्या प्राप्त होगा, तुम्हें भगवत धाम प्राप्त होगा, यू विल अचीव मी। वेर एज दिस इंद्र ही विल सिंपली अचीव अ मटीरियल नेम फेम एडोरेशन। और इंद्र सुनने के बाद वो ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, नहीं 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 आपने ठीक कहा, तो यहां पर भगवान स्वयं सिचुएशनल लीडरशिप का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई कहां पर तुमको गौर फरमाना चाहिए और कहां पर तुमको लेट इट गो। एक मैंने यूके में सेमिनार दिया था, सेमिनार का टाइटल था लेट गो लिव फ्री, लेट गो लिव फ्री। अब होता क्या है कि जब हम सही हैं और हम सही हैं और हमको बोला जाता है यू करेक्ट योर सेल्फ, तब सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएशन लगता है। जब हम गलत हैं और फिर हमको कहा जाए कि तुम सुधरो, तो फिर बोलती बंद होती है, क्या बोलेंगे, सुधरना ही पड़ेगा, मरता क्या ना करता, गलती की है। लेकिन जब तुमने गलती नहीं की है और फिर तुमको बोला जाता है तुम सुधरो, और वो भी किसके सामने, जो अपराधी है, अपराधी खड़ा है सामने, अपराधी के सामने बोला जा रहा है, पृथु महाराज को बोल रहे हैं तुम सुधरो, तुम बंद करो, ये तुमको क्या पड़ी है ये 100th यज्ञ करने की। अभी हमारे ब्रजबिहारी प्रभु आए थे, तो ब्रजबिहारी प्रभु बता रहे थे कि ये उनके साथ एक किस्सा हुआ। राधा गोपीनाथ मंदिर का संडे फीस्ट प्रोग्राम चल रहा है, एक सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल सन्यासी व्यासासन पर क्लास दे रहे बैठे, और ब्रजबिहारी प्रभु कुछ ब्रह्मचारी के साथ ऑडियंस में बैठे हुए, और राधा गोपीनाथ के संडे फीस्ट में एवरेज 2000 से ज्यादा लोग आते हैं, तो क्राउड कितना है 2000। और ब्रजबिहारी प्रभु वो एक सीनियर मेंबर हैं, सीनियर जो हमारे राधा गोपीनाथ के ब्रह्मचारी के सीनियर लीग के ब्रह्मचारी हैं, काउंसलर हैं, बड़े प्रीचर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, MBA, ये सब कुछ बाहर के इतने डिग्रीज हैं उनके, ऑडियंस में बैठे हुए हैं, उनके काउंसलर्स ऑडियंस में बैठे हुए हैं, और ये सन्यासी लेक्चर के बीच में ब्रजबिहारी प्रभु की तरफ देखते हुए उंगली करते कहते हैं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यू आर पुटिंग योर फिंगर इन योर नोज, गेट अप। इमेजिन करो कि कोई ऐसा सीनियर ब्रह्मचारी को ऑडियंस में, वो भी संडे फीस्ट के बीच में, क्या बोल रहा है ये सन्यासी, गेट अप आउट फ्रॉम द टेंपल हॉल। तो ब्रजबिहारी प्रभु वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने, वो कभी ऐसा करते नहीं, तो उन्होंने ऐसा किया भी नहीं था, तो बोले मैं क्यों खड़ा हूं। अभी वो खड़ा होना मतलब अभी पूरे ऑडियंस को तो दिख नहीं रहा है कि सन्यासी किसको चिल्ला रहे, किसके ऊपर, क्योंकि सन्यासी को इनका नाम नहीं पता था, वे खाली उनके दिशा में उंगली करके बोल रहे, गेट अप आउट फ्रॉम द टेम्पल। तो ब्रजबिहारी प्रभु को लगा कि शायद ये गलत फहमी हुई है, तो वो खड़े नहीं हुए, क्योंकि सबके सामने खड़े होकर जाना इतना ह्यूमिलिएटिंग है, तो बैठे रहे वो। तो ये सन्यासी, उन्होंने एक लाइन फिर उनके प्रवचन की कही, इनकी ओर फिर से देखा, यू आर स्टिल सिटिंग, आई टोल्ड यू गेट अप आउट ऑफ दिस टेम्पल हॉल, वॉश योर हैंड्स। तो गौरांग प्रभु बगल में बैठे थे, तो गौरांग प्रभु ने ब्रजबिहारी प्रभु को कहा, भैया तुमको बोल रहे हैं उठ जा। ये फिर भी नहीं उठे, बिकॉज ही वॉज राइट, ये नहीं उठे। तीसरी बार सन्यासी चिल्लाए, आर यू गेटिंग अप और शुड आई गेट अप फ्रॉम द व्यासासन एंड थ्रो यू आउट ऑफ दिस टेम्पल हॉल। कैन यू इमेजिन, हमको तो हंसी आ रही है, बट इमेजिन अगर हमारे साथ कोई ऐसा सलूक कर रहा है। क्या कहा, आर यू गेटिंग अप और शुड आई गेट ऑफ द व्यासासन एंड थ्रो यू आउट ऑफ द टेम्पल हॉल। तो इनको उठना हुआ, सबके सामने ये उठे, टेम्पल हॉल के बाहर गए। और ये सोच रहे थे कि हाउ शुड दिस बी टेकन, ये एक भगवान की मर्सी है, मेरा कर्म है, जो मैं सुनाता हूं, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। हाँ, वो लेक्चर देना आसान है, सेमिनार अलग अलग उसके पावर पॉइंट वीडियो दिखाना आसान है, लेकिन जब आप बीतती है, खुद के ऊपर बीतती है, व्हाई डिड दिस थिंग हैपन टू मी, तभी एक गृहस्थ जो उनको अच्छी से जानते हैं, वो टेम्पल हॉल से बाहर आए, और जो पीछे वाला कमरा है जहां ब्रजबिहारी प्रभु आए थे, तो वहां पर आए। तो ये गृहस्थ ब्रजबिहारी प्रभु को कहते हैं, प्रभु जी आई एम सॉरी, वो एक्चुअली वो नाक में हाथ मैं डाल रहा था, वो गलती से शायद वो उंगली आपकी ओर गई, लेकिन वो मेरी आदत, वो मैं कर रहा था, तो आई एम सॉरी, मैं उठ नहीं पाया सबके सामने बोलने, कन्फेस करने के लिए कि मैं कर रहा था। इमेजिन अब कैसा लगेगा आपको, कि जो व्यक्ति जिसने गलती करी है वो उठ के बाद में आया तो सबको क्या लगा कि ये शायद ब्रजबिहारी प्रभु को सांत्वना देने जा रहे हैं या हाथ धुलाने जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्टोरी खत्म नहीं हुई उधर, अब ये सब कुछ हो गया। उसके बाद ब्रह्मचारी आश्रम, अब ब्रह्मचारी आश्रम एक ऐसा आश्रम है कि वहां पर आपको हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि किसी शास्त्र में नहीं श्लोक दिया गया है। ब्रह्मचारी ऐसी ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो ब्रह्मचारी बाद में वो ब्रजबिहारी प्रभु संडे फीस्ट हो गया, ब्रजबिहारी प्रभु अपना प्लेट लेके अब ब्रह्मचारी के साथ बैठे हैं, तो प्रभु हाथ धोया कि नहीं? इमेजिन द ह्यूमिलिएशन विच वेंट ऑन फॉर द होल डे। क्या प्रभु जी आपके माता पिता ने ये नहीं सिखाया हाथ धोना चाहिए? हाँ, फिर कौन सा खजाना था नाक के अंदर? तो ब्रह्मचारी एक एक करके यहां से ताने मार रहे हैं, वहां से ताने मार रहे हैं। तो ब्रज बिहारी प्रभु सोच रहे हैं कि हाउ शुड आई हैंडल दिस स्पिरिचुअली। तो मुझे बता रहे थे, तो मैंने हमारा रिसेंट जो कोट मैंने उनको बताया, व्हेनेवर समबडी ऑफेंड्स मी आई रेज माई सोल सो हाई दैट द ऑफेंस कैनॉट रीच मी। मैंने कहा ये बोलना बहुत आसान है, मैं तो आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर मेरे साथ ये बीतती तो पता नहीं कोई और मेरे को कहता तो मुझे थोड़ा बहुत समझता। तो इसलिए यहां पर यही सिचुएशन है, गलती करी है इंद्र ने और करेक्ट किया जा रहा है पृथु महाराज को। तो पृथु महाराज ने कोई केस नहीं ठोका, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं डिसोन करता हूं भगवान विष्णु को, आपको भी नहीं मानता, ये इंद्र को भी, अश्वमेध है कि सब गए, नास्तिक बनता हूं मैं या मैं आईसी ज्वाइन करता हूं। तो इधर क्या समझ में आ रहा है, जैसे आपने बहुत से सेमिनार सुने होंगे ना, हाउ टू बिकम हैप्पी, कोई बुक्स भी होते ना 108 वेज टू बिकम हैप्पी। आज मैं आपको बताना चाहूंगा 2 वेज टू बिकम अनहैप्पी। आप लोग सोच रहे होंगे ये मोटिवेशनल स्पीकर है या डीमोटिवेशनल स्पीकर है। सो आई विल टीच यू 2 वेज हाउ टू बिकम अनहैप्पी। द फर्स्ट वे टू बिकम अनहैप्पी, ट्राई गो प्लीजिंग एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, यू विल बी मिजरेबल। सबको खुश करने जाओ, सब खुश हो मुझसे, पूरा संसार, सर्वे बंधु सर्वे संतु सुखिनः, सब लोग मेरे से खुश हो जाएं। महात्मा गांधी वो महात्मा बने हुए थे, एक व्यक्ति उनसे खुश नहीं हुए, गोली से उड़ा दिया। सो द फर्स्ट वे टू बिकम अनहैप्पी, गो प्लीज एवरीवन। तुम जीव को खुश करने जाओगे पेट खराब हो जाता है ना? तुम दोनों को एक साथ खुश नहीं कर सकते, पेट को और जीव को। पेट को अर्थात द स्टमक शुड बी हेल्दी एंड द टंग शुड बी सेटिस्फाइड। जहां पर जीव को सेटिस्फाई करने जाओगे ये बाहर आने लगता है, पेट बाहर आने लगता है। सो ये तोंद बाहर आ गई मतलब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टंग एंड तोंद, और तोंद अंदर गई मतलब बेचारे को घास पूसी खाने मिल रहा है। सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्लीजिंग द टंग एंड प्लीजिंग द तोंद लाइक दैट। सो फर्स्ट श्योर शॉट फॉर्मूला ऑफ बिकमिंग अनहैप्पी, गो प्लीज एवरीवन। एंड द सेकेंड वे टू बिकम अनहैप्पी, ट्राई टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ एवरीवन, है ना। सब लोग के पास दो किताबें होती हैं, एक ब्लैकलिस्ट, उनके लिस्ट, उनकी किताब में कुछ लोग होते हैं ब्लैकलिस्टेड होते हैं, ये लोग मेरे जीवन के ब्लैकलिस्टेड लोग हैं, और कुछ लोग होते हैं व्हाइट लिस्ट, वो व्हाइट लिस्ट वाली किताब होती है। सो यू इफ यू वॉन्ट टू बिकम इन एवरीवन्स गुड बुक्स, इफ यू वॉन्ट टू गो इन एवरीवन्स गुड बुक्स, यू विल बी मिजरेबल, यू कैन नेवर, बिकॉज देर विल ऑलवेज बी पीपल इन योर लाइफ इन हूज ब्लैकलिस्ट यू विल बी लिस्टेड, एंड यू विल ऑल्सो हैव अ ब्लैकलिस्ट एंड व्हाइट लिस्ट। समझ गया, टू वेज हाउ टू बिकम अनहैप्पी। तो सिचुएशनल लीडरशिप के कनेक्शन में आपको कुछ उदाहरण हम देना चाहेंगे। ये एक पक्षी है जिसका नाम है बजार्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग पक्षी है। ये पक्षी जब अपनी उड़ान भरता है, जैसे कि हम रेगुलर किसी पक्षी को, चाहे चिड़िया हो, कौवा हो, कबूतर हो, हम देखते हैं ना तुरंत उड़ सकता है वो, आप जाओ उसके पास तुरंत पक्षी उड़ जाएगा। ये तुरंत टेक ऑफ नहीं ले सकता ये पक्षी, इसको टेक ऑफ लेने के लिए एक रनवे चाहिए, जैसे प्लेन के लिए रनवे चाहिए ना, तो ये पहले भागेगा 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 भागेगा, जमीन पे ये रनअप लेता है रनअप, और फिर टेक ऑफ लेता है प्लेन की तरह। सो दिस बर्ड कैनॉट फ्लाई अनलेस इट हैज अ रनवे, इट रिक्वायर्स अ सिचुएशन फेवरेबल फॉर टेक ऑफ। मुद्दा क्या है, सिचुएशनल लीडरशिप। This bird requires a favorable situation for takeoff. ये है चमगादड़ जिसको बोलते हैं bat. ये bat को आप जमीन पर छोड़ दो, जैसे उसको जमीन चाहिए, buzzard को जमीन चाहिए, bat को जमीन पर छोड़ दो, ये कभी नहीं उड़ पाएगा। बहुत fast ये लोग उड़ते हैं bats, आपने देखे होंगे। इसको एक दीवार चाहिए, दीवार पर ये अपना थ्रस्ट डालता है, वहां के प्रेशर से टेक ऑफ लेता है बैट। इसलिए आप देखोगे कि ये जो गुफाएं होती है, गुफाओं की दीवार पर चिपके होते हैं ये। सो इट रिक्वायर्स एलिवेशन फॉर टेक ऑफ, बैट रिक्वायर्स एलिवेशन फॉर टेक ऑफ। फिर तीसरा उदाहरण है भंवरे का, फ्लाइट ऑफ अ बम्बल बी। तो ये भंवरा क्या है कि ये सीधा नहीं, ऐसे हाइट वाइज नहीं उड़ सकता, ये साइडवेज उड़ता ही है। तो इसको अगर आप किसी डब्बे में रख दो और ढक्कन उतार दो, डब्बे का ढक्कन निकाल दो, तो ये भंवरे को समझ में नहीं आएगा कि ऊपर भी हेलीकॉप्टर के जैसे, हेलीकॉप्टर कैसे सीधा ऊपर उड़ता है, तो ये नहीं उड़ सकता, ये हर टाइम साइड टकराता रहेगा वो डब्बे में, इधर उधर बाहर नहीं आ पाएगा ये। तो ये भंवरा जो है ये कंफ्यूज हो जाता है, कैनॉट फ्लाई अपवर्ड्स, इट कैन ओनली फ्लाई साइडवेज। पॉइंट क्या है, आप लोग सोच रहे हैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल शुरू हो गया। पॉइंट ये है कि ये जो तीन उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करे, इनकी उड़ान के लिए इनको फेवरेबल सिचुएशंस चाहिए। व्हाट इज सिचुएशनल लीडरशिप, व्हेन द लीडर नोज विच सिचुएशन इज फेवरेबल फॉर द फॉलोअर टू एडवांस स्पिरिचुअली। श्रील प्रभुपाद बेस्ट सिचुएशनल लीडर, सिचुएशंस के अनुसार. एक मैं प्रभुपाद का पास टाइम सुनाना चाहूंगा. वृंदावन में दो प्रभुपाद के सन्यासी डिसाइपल आपस में उनकी कट्टर दुश्मनी हो गई. सन्यासी डिसाइपल्स हंसदूत महाराज, अच्युतानंद महाराज, दोनों रोज लड़ते थे. तो प्रभुपाद के पास इन दोनों का केस गया. तो प्रभुपाद ने हंसदूत महाराज को कहा, यू आर अ सन्यासी. सन्यासी मीन्स ट्रैवलिंग एंड प्रीचिंग. व्हाट आर यू डूइंग इन वृंदावन? गो ट्रैवल एंड प्रीच. तो हंसदूत महाराज को डायरेक्टली उनके गुरु ने क्या कह दिया? यू आर अ सन्यासी. सन्यासी मीन्स ट्रैवलिंग एंड प्रीचिंग. गो एंड ट्रैवल. चले गए वो कमरे से बाहर. अब बचे हंसदूत, नहीं अच्युतानंद महाराज. तो अच्युतानंद महाराज को प्रभुपाद कहते हैं, यू आर अ सन्यासी, यू आर सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल, स्टे इन वृंदावन, बिकम टेम्पल प्रेसिडेंट, बी रिस्पॉन्सिबल. गोपाल कृष्ण महाराज ये सब सुन रहे थे. गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं, प्रभुपाद क्या एक्सपर्टीज है आपका, दोनों सन्यासी और दोनों को आपने सन्यास के ऑपोजिट ऑर्डर्स दिए. एक को कहा यू आर अ सन्यासी, यू आर सपोज टू ट्रेवल एंड प्रीच. दूसरे को कहा यू आर अ सन्यासी, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, स्टे हियर एंड बिकम टेम्पल प्रेसिडेंट. तो प्रभुपाद अपने रॉकिंग चेयर पर थे और रॉकिंग चेयर पर प्रभुपाद मुस्कुराने लगे. प्रभुपाद बोले, समटाइम्स सम गॉड ब्रदर्स शुड लिव सेपरेटली, दैट इज गुड फॉर द मिशन. जैसे प्रभुपाद ने कहा, मैन इज वंडरफुल, विमेन वेरी वंडरफुल, बट व्हेन दे कम टुगेदर दे मेस अप. मैन इज गुड, विमेन आर मोर गुड, बट व्हेन मैन एंड वुमेन कम्स टुगेदर. तो वैसे ही प्रभुपाद कहे, सेपरेटली they will do wonderful things for the mission. यहां पे प्रभुपाद ने क्या किया? सिचुएशनल लीडरशिप. जैसे कि इंद्र और पृथु, कि देवराज इंद्र को जो चाहिए था, भैया तुमको ये टिक मार्क चाहिए, है ना. कई बार हमको डिवोशनल सर्विस में क्या चाहिए? बॉक्सेस टिक मार्क होने चाहिए. दीक्षा हो गया, ब्राह्मण दीक्षा हो गया, टिक मार्क, ये पोस्ट मिल गया, इतना हरिबोल हो गया मेरा. जैसे ब्रज बिहारी प्रभु बोल रहे थे ना, हरिबोल हरिबोल, हाँ हरिबोल हो रहा है, गार्लेंड्स मिल रहे हैं, हरिबोल, सब बॉक्स में टिक मार्क हो रहा है, टिक मार्क हो रहा है. तो ऐसे देवराज इंद्र को सब बॉक्स में टिक मार्क चाहिए था. तो भगवान ने कहा, भाई पृथु तुम भी आके टिक मार्क कर दो इसे, ये खुश रहेगा. ही विल बी हैप्पी एंड देन रेंडर सम वॉट एवर लिटिल डिवोशनल सर्विस. क्यों बार बार इतना फेवर्स इंद्र को दिया जाता है? क्योंकि भगवान ये देखते हैं कि इंद्र जो है, इनको अगर ये फेवर्स नहीं दिए तो थोड़ी बहुत जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की आशा है वो भी नहीं रहेगी इसके जीवन में. सो देयरफॉर वो थोड़े बहुत एडवांसमेंट की आशा है, उस स्पार्क को हम खत्म ना करें, इसलिए भगवान ले लेंगे. इसका गधा आगे, तुम्हारा घोड़ा पीछे कर लो, ऐसे कर. तो यहां जब हम सिचुएशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो प्रभु श्री राम ने उस समय अयोध्या वासियों को जो सांत्वना दी, कि भगवान श्री राम वो गुणगान किसका कर रहे हैं? सबसे पहले वो गुणगान कर रहे हैं महाराज दशरथ, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे जाने के पश्चात जो इनका पूरा क्रोध है वो दशरथ पर उतारेंगे ये लोग। तो प्रभु श्री राम वो महाराज दशरथ का गुणगान करते हैं कि मैं आप लोगों को निवेदन और आदेश देता हूं कि ये 14 साल आप महाराज दशरथ को संभालें, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत यदि सपोर्ट की है तो वो महाराज दशरथ को है इस समय, क्योंकि वो एक हेल्पलेस सिचुएशन में हो गए थे। वचन दे दिया है, अब उससे मुकर नहीं सकते क्योंकि उनकी रघुकुल की जो रीत है, और यहां पर वनवास उनको दिलाना पड़ा रामचंद्र जी को उन वचनों के वजह से। तो सबसे ज्यादा जो हेल्पलेस सिचुएशन में वो दशरथ। तो सबसे पहले प्रभु श्री राम अयोध्या वासियों को कहते हैं आप महाराज दशरथ को संभालें, क्योंकि मैं नहीं हूं संभालने के लिए, आपको संभालना है। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कैकेयी को संभालो, क्योंकि रामचंद्र जी जानते थे कि ये अयोध्यावासी मिलकर कैकेयी का क्या हर्ष करेंगे। इमेजिन कि रामचंद्र जी सबसे पहले, अभी वनवास प्रारंभ भी नहीं हुआ है, तो किसके विषय में चिंता कर रहे हैं? इन दो व्यक्तियों के विषय में चिंता कर रहे हैं जिनके वजह से वनवास मिला है, दशरथ और कैकेयी। और फिर प्रभु श्री राम कहते हैं कि भरत वो अयोध्या में नहीं है, भरत जब अयोध्या में आएंगे तो मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से, अयोध्या वासियों को कह रहे हैं कि आप मेरे भरत को संभालना, क्योंकि भरत सबसे ज्यादा पीड़ित होगा। दशरथ और कैकेयी से भी ज्यादा पीड़ित भरत होने वाला है, इसलिए आप भरत को संभालना। दशरथ, कैकेयी और भरत, इन तीनों को संभालने का आदेश प्रभु श्री राम अयोध्या वासियों को दे रहे हैं। तो अयोध्या वासी अब तक जो प्रभु श्री राम के गुणों से इतना ज्यादा प्रभावित थे और इतना सेपरेशन महसूस कर रहे हैं कि अभी ये जाने वाले हैं 14 वर्ष हमसे दूर, ये इनके निवेदन सुनने के पश्चात अयोध्या वासी और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं प्रभु श्री राम के प्रति, और मुश्किल हो रहा है सेपरेट होना। प्रभु श्री राम के अब ऐसे निस्वार्थ गुणों को देखकर, तो हो क्या रहा था, यहां पे सिचुएशन देखिए, प्रभु श्री राम वो अयोध्या वासियों को एक जिम्मेदारी दे रहे हैं, अयोध्या वासियों को सांत्वना दे रहे हैं कि मैं जा रहा हूं परंतु ये सारी जिम्मेदारियां मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं, और ये बोलने के वजह से अयोध्या वासियों का सेपरेशन और मुश्किल कर रहे हैं प्रभु श्री राम। आप कल्पना कीजिए कि ये कैसे इमोशंस का आदान प्रदान हो रहा है। दिस इज कॉल्ड प्योर स्क्रिप्चर्स, ऐसे इमोशंस का आदान प्रदान। तो इसलिए जो 7th lesson रामचंद्र जी हमको सिखा रहे हैं, वेन यू जेन्युइनली ग्लोरीफाई अ वर्दी पर्सन इट मेक्स यू अट्रैक्टिव। रामचंद्र जी अट्रैक्टिव और हो रहे थे, उनको उनका ध्यान, अयोध्या वासियों का ध्यान दशरथ, कैकेयी और भरत के ऊपर था ही नहीं। हालांकि रामचंद्र जी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये तीन, लेकिन अयोध्या वासी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं रामचंद्र जी के प्रति। और अब यहां पर रामचंद्र जी इनको सांत्वना दिए, और उस रात उन्होंने अयोध्या वासियों के साथ ही विश्राम किया कि मैं आप लोगों के साथ ये पहली रात जो है अब तक वनवास प्रारंभ नहीं हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ बिताता हूं। तो वहीं पे सीमा पर, अयोध्या की सीमा पर, और रात के 2 बजे लक्ष्मण तो सोए नहीं, लक्ष्मण जगे हुए हैं, तो रात के 2 बजे 2:30 बजे लक्ष्मण देखते हैं कि रामचंद्र जी उठ रहे हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं है, तो रामचंद्र जी ये रात्रि के समय क्यों उठ रहे हैं? तुरंत रामचंद्र जी सुमंत्रा से कहते हैं कि तुम रथ को अयोध्या की ओर ले चलो, और लक्ष्मण और सीता से कहते हैं, सीता को भी उठा देते हैं, लक्ष्मण और सीता से कहते हैं अभी इसी वक्त हमें निकलना है, ये सारे अयोध्यावासी सोए हुए हैं, ये जग जाएंगे, मैं और इनके हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता कि इनके सामने, इनकी आंखों के सामने मैं वनवास प्रारंभ करूं। तो सोते हुए अयोध्या वासियों को छोड़कर राम लक्ष्मण और सीता को लेकर निकलते हैं। सुमंत्रा से कहते हैं कि रथ को, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग रथ के पहिए के निशान को देखते हुए पीछा करेंगे, तो अयोध्यावासी पीछा करते करते कहां पहुंचेंगे? फिर अयोध्या नगरी में पहुंच जाएंगे। अगेन सिचुएशनल लीडरशिप। अब मैं आप लोगों का फोकस माता सीता के ऊपर लाना चाहता हूं कि तमसा नदी के तट पर प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण पहुंचते हैं। तो अयोध्या से निकले गंगा, और गंगा के पश्चात पहले तो सरयू, फिर गंगा, फिर गंगा के पश्चात तमसा नदी के तट पर। तो यहां पर सीता माता का इनोसेंस देखिए कि सीता माता वो प्रभु श्री राम से बार बार पूछ रही थी कि जंगल आ गया, हमारा वनवास शुरू होना चाहिए, जंगल आ गया। अब वो अयोध्या की सीमा पर पहुंचे थे कि सीता पूछती है जंगल आ गया, गंगा के तट पर पहुंचे सीता ने फिर से पूछा जंगल आ गया, तमसा नदी के तट पर पहुंचे फिर से प्रभु श्री राम से सीता पूछती हैं जंगल आ गया। सीता वॉज सो इनोसेंट, शी हैड नेवर सीन जंगल इन हर लाइफ। और 14 साल सीता को ऐसे घनघोर जंगल में बिताना है, ऐसी राजरानी सीता जिनके विषय में बताया जाता है कि जब वो जनक मिथिला, नरेश जनक के राज्य में सीता रहती थी, तो सूर्य की एक किरण जब सीता के गाल पर पड़ती तो वहां पर लाल हो जाता था वो गाल, इतनी नाजुक ये सीता, इतनी मासूम ये सीता। अब 14 वर्ष जिन्होंने जंगल देखा नहीं अपने पूरे जीवन काल में, जिनको पता नहीं कि जंगल क्या होता है, बार बार पूछ रही कि जंगल शुरू हो गया, जंगल शुरू हो गया, ये प्रश्न जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण सुन रहे थे तो वो जवाब क्या देते? दोनों राम और लक्ष्मण सीता के इस प्रश्न को बार बार सुनकर उनके आंखों से केवल आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे, और रामचंद्र जी कोसने लगे, अपने आप को कोस रहे हैं कि अरे मैंने सीता से विवाह ही क्यों किया, कोई अच्छा पति मिल जाता सीता को यदि मैं विवाह नहीं करता, मैं क्यों, अगर विवाह भी कर लिया तो मैं सीता को क्यों अपने साथ लाया, मैं ये भी नहीं जानता था कि सीता इतनी मासूम है कि सीता को यह भी नहीं पता कि शहर और जंगल में अंतर क्या होता है। तो यह अगला लेसन सीता मैया हमें सिखा रही हैं, इनोसेंट सरेंडर इज बेटर देन कैलकुलेटेड सैक्रिफाइस। जब हम हमारे जीवन में कुछ नियमों का भी पालन करते हैं, हम कुछ सैक्रिफाइस भी करते हैं, परंतु वो सैक्रिफाइस, वो सारे नियम, वो हमारी साधना यदि कैलकुलेटेड है, तो भगवान की कृपा वो कैसे आएगी? वो भी कैलकुलेटेड आएगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। इफ वी आर सरेंडरिंग टू कृष्णा विथ कैलकुलेटिव मेंटेलिटी, कृष्णा विल ऑल्सो शावर हिज मर्सी विथ कैलकुलेशंस। इसलिए इस बार की जन्माष्टमी के समय जब करते समय मैं सोच रहा था कि वो है एक श्याम सुंदर जो बेहिसाब, कोई हिसाब नहीं रखते वो कृपा देते समय, वो है श्याम सुंदर जो बेहिसाब कृपा देते हैं हमें, और एक हम हैं जब उनका नाम भी लेते हैं तो गिन गिन के करते हैं, है ना? लानत है हम पर। कृपा जब उनकी प्राप्त करते हैं तो बेहिसाब कृपा की अपेक्षा करते हैं, और जब उनका नाम लेने की बारी, जब हमारी जिम्मेदारी आती है तो गिन गिन कर, कहीं ज्यादा ना हो जाए। तो ये है हमारी स्थिति। और एक है सीता, इनोसेंट सरेंडर। उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं कि ये जंगल का जीवन 14 वर्ष किस प्रकार का होगा। जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, तो उस समय उन्होंने प्रभु श्री राम से पहले ये सब जानकारी हासिल नहीं करी कि पहले मुझे बताओ कौन से जंगल में जाओगे और वहां पर क्या क्या उपलब्ध हैं। सारी जानकारी पहले, पूरी सिक्योरिटी अपनी फिक्स नहीं करी। दिस वॉज द इनोसेंट सरेंडर ऑफ माता सीता। तो मैं हमारे आज का सेशन यहीं पर इसको विराम देना चाहूंगा, ताकि हम हमारे हृदय में माता सीता के ये दिए गए लेसन पर गौर करें पूरा एक हफ्ता कम से कम। डू वी वॉन्ट टू बिकम अ कैलकुलेटिव साधक कि हम गिन गिन के हमारी साधना करें और गिनाए भगवान को कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतने माला जप करी है, मैंने तुम्हारे लिए इतने निर्जल उपवास किए हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतने पैसे डोनेट किए हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है वो किया है। क्या हम गिन गिन के भगवान को और दुनिया को ये जताना चाहेंगे कि ये है मेरा सैक्रिफाइस? और आर वी विलिंग टू सरेंडर लाइक सीता? और हमारे आचार्य, जाते जाते ये ध्यान में रखिए कि हमारे आचार्य सीता मैया के उस प्रश्न पर टीका लिखते हैं। क्या टीका लिखते हैं? कि सीता मैया क्यों पूछ रही थी कि जंगल शुरू हो गया, क्या जंगल शुरू हो गया? वो ये नहीं, डर के मारे नहीं कि अब, या क्यूरियोसिटी के वजह से नहीं पूछ रही थी कि उन्होंने कभी जिंदगी में जंगल नहीं देखा तो जिज्ञासु थी जंगल देखने के, नहीं। वो इसलिए पूछ रही थी कि उनके अंदर एक उत्कंठा थी कि जब जंगल शुरू हो जाएगा तो वनवास शुरू होगा, और जब वनवास शुरू होगा तो मेरी सेवा प्रभु श्री राम के प्रति शुरू होगी। ये कारण था माता सीता के वो प्रश्न पूछने का। और हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए, ऐसे जो महान ग्रंथ हैं रामायण, श्रीमद् भागवत, महाभारत इत्यादि और ऐसे महानुभावों के उदाहरण का श्रवण कर कर हमारे जीवन में उतारने का एक अवसर हमें प्राप्त है। तो आइए हम सब मिलकर ऐसे प्रभु श्री राम, ऐसे भरत इनके चरित्र, ऐसे माता सीता इनके चरित्र को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को हम सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?
वेरी नाइस लेक्चर प्रभु, थैंक यू वेरी मच। एक डाउट मुझे ऐसा था कि वो जो प्राइमरी रीजन ऑफ अपीयरिंग गॉड एंड सेकेंडरी रीजन हमने जो डिस्कस किया शुरू में लेक्चर के, तो जो भगवद गीता का श्लोक भी है यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय च साधूनां वगैरह, तो मैं तो पर्सनली यही समझ रहा था कि भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं वो यही करने के लिए कि विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन आपने बोला कि प्राइमरी रीजन इज वृंदावन में सबके साथ में समय देने के लिए, उनसे लीला करने के लिए, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आई रिक्वेस्ट इफ यू कैन इलाबरेट ऑन दिस।
जैसे आप ली ग्रैंड में नौकरी पर हो तो दुनिया के सामने प्राइमरी आप समय कहाँ बिता रहे हो? 8 घंटा 10 घंटा कहाँ बिताते हो? ली ग्रैंड है ना। लेकिन आपसे कोई पूछे कि आपके दिन का जो सबसे प्राइमरी, जो हृदय से दिल से आप समय कहाँ बिताते हो? आपके परिवार के साथ है कि नहीं? तो वही है आपके क्वेश्चन का आंसर। अशोक मार्ग में आपका घर और ली ग्रैंड ऑफिस, ठीक है। तो धर्म की स्थापना मतलब ली ग्रैंड ऑफिस, वृंदावन मतलब अशोक मार्ग।
थैंक यू वेरी मच।
हरी बोल।
हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल क्लास। एक क्वेश्चन था कि कई बार हम लोग फॉलोइंग कृष्णाज इंस्ट्रक्शंस और गुरु महाराज इंस्ट्रक्शन, वी ट्राई टू फॉलो द लॉ ऑफ मर्सी, बट पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड एज आर वीकनेस। सो हाउ डू वी टैकल विद दैट सिचुएशन? And one more thing, ki, when something is not exactly what your heart wants, so like some decisions which are, you know, in guidance from the Lord, Guru Maharaj and all, and still you have to do it. So consciousness ka jo dvandva chalta hai, to usko kaise resolve karna chahiye?
We'll take the first question. Mercy is often taken as weakness. First of all, if the other person is taking undue advantage of Lord's mercy or say Guru's mercy, then that person is not worthy of being corrected through that mercy. So you should understand that that person is becoming weak, not the person who is giving the mercy is becoming weak, but the person who is taking undue advantage of the mercy is becoming weak. It's just a matter of time, and how you perceive from what level. Like, say, for example, somebody who in the eyes of the world becomes an upright person, but in the eyes of God he is a hypocrite. So yes, the world will see that person as very powerful, and at the end of his life, what he will get? The world. But someone who may not get the popularity of the world, but in the eyes of Krishna, he is pure. What he will get at the end of his life? Krishna. And who is Krishna? Who is the owner of the world. So who is strong? Who is weak? तो अर्जुन ने क्या कहा भगवान को कि दुर्योधन ले गया माखन, छाछ रह गई मेरे पास, माखन लेकर मैं क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास. What was your second question again?
The, you know, the decision against your heart. So many a times what happens is, while implementing that decision, your heart may be in that conflict. So how do we work upon the consciousness so that it is best to serve Guru Maharaj's instruction or the scriptures instruction and all of this?
No, but conflict is between what?
So like by heart you know that, you know, this is not what I want to do. And with the instructions, you know that this is what I'm supposed to do. So your heart may not be while, you know, it may not be with that decision while implementing that decision. So how do you ensure?
Yeah, so we took the episode of Ashwatthama, who was to be punished by Arjun. So the shloka is Harer Hardam Athasina. Arjun, he didn't follow his heart, he followed the heart of Krishna. Harer Hardam. And that's how Arjun got the intelligence to punish Ashwatthama in such a way that it was more than killing Ashwatthama physically, by cutting off that jewel and his hair. So he got, you know, he learned the art of decision making, or that very refined intelligence, when he followed the heart of Krishna, not his heart.
But then is it that offense that if we still thinking that this is not what I wanted to do?
No, then the question is, who am I? If I am surrendered to Krishna, Prabhupada said, we are non-entities. As long as I think that this is my decision and this is what I feel is right, this is what I feel is what, you know, is liking to me, till that point of time you are separating yourself from Krishna. Harer Hardam Athasina means Arjun's heart and Krishna's heart, there was no difference. That's the answer. Okay? Or kuch? Anything else? Granthara Shrimad Bhagavatam ki jai, Shila Prabhupada ki jai, Anant Koti Vaishnav Vrind ki jai. He's